नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बात की और ईरान और इसराइल के बीच हाल ही में हुए तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को पहलगाम आतंकी हमले की घटना में एक बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने दो लोगों को हमले में शामिल आतंकियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। लद्दाख में सरहद शौर्यथन 2025 का आयोजन आज द्रास स्थित ऐतिहासिक कारगिल युद्ध स्मारक पर हुआ। मिजोरम में असम राइफल्स और अन्य एजेंसियों ने 11,53,00,000 रूपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। इस संबंध में 2 महिलाओं सहित 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कनाडा ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बात की और ईरान और इसराइल के बीच हाल ही में हुए तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। एक सोशल मीडिया में श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों की सराहना की है। कल विशाखापट्टनम में 3,00,000 से अधिक लोगों के साथ अब तक के सबसे बड़े योगाभ्यास का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योगनांद्र पहल और विशाखापट्टनम का कार्यक्रम कई लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि योग एक बार फिर लोगों को एक साथ लाता है। भारतीय नौसेना अगले महीने की 1 तारीख को रूस के कलिनिनग्राद में अपने नवीनतम स्टील्थ मल्टीरोल फ्रिगेट तमाल का जलावतरण करेगी। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय जे सिंह कई वरिष्ठ भारतीय और रूस के रक्षा अधिकारियों की उपस्थिति में मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह पिछले 2 दशकों में रूस से शामिल किए गए क्रिवाक श्रेणी के फ्रिगेट की श्रृंखला का 8वां जहाज है। तमाल तुशिल श्रेणी का दूसरा जहाज है जो अपने पूर्ववर्ती तलवार और टैग श्रेणी के 3-3 जहाजों के उन्नत संस्करण है। मंत्रालय ने बताया कि तमाल के निर्माण की निगरानी मॉस्को में भारतीय दूतावास के तत्वाधान में कलिनिनग्राद में तैनात युद्धपोत निगरानी दल के विशेषज्ञों की एक भारतीय टीम ने की थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को पहलगाम आतंकी हमले की घटना में एक बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने 2 लोगों को हमले में शामिल आतंकियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनआईए ने बताया कि इनमें बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क में रहने वाला बशीर अहमद जोथर शामिल है। इन दोनों ने हमले में शामिल 3 हथियारबंद आतंकियों की पहचान उजागर की है। एजेंसी ने बताया है कि सभी आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और आतंकी गुट लश्करे तैयबा से संबंध थे। एनआईए के मुताबिक इन लोगों ने जानबूझकर तीनों आतंकवादियों को हमले से पहले हिल पार्क में पना दी। बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों ने आतंकवादियों को खाना, रहने की जगह तथा लॉजिस्टिक सहयोग प्रदान किया। एनआईए ने दोनों व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। लद्दाख में सरहद शौर्यथन 2025 का आयोजन आज द्रास स्थित ऐतिहासिक कारगिल युद्ध स्मारक पर हुआ। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना ने पुणे स्थित सरहद फाउंडेशन और कारगिल के स्थानीय नागरिक प्रशासन के सहयोग से किया। इसमें देश भर से 2,500 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। मैराथन को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हरी झंडी दिखाई। श्री शिंदे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि देश भर से आए 2,500 से अधिक एथलीटों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भी भारतीय सेना में देश के अटूट विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने कारगिल विजय दिवस से पहले इस कार्यक्रम के आयोजन में सेना और सरहद फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस आयोजन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शांति, देशभक्ति और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। श्री शिंदे ने कारगिल युद्ध स्मारक के विकास और उन्नयन के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से आर्थिक मदद प्रदान की। उन्होंने 14 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल रितेश भल्ला को 3 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी असली शक्ति दिखाकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मिजोरम में असम राइफल्स और अन्य एजेंसियों ने 11,53,00,000 रूपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। इस संबंध में 2 महिलाओं सहित 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि लुंगलेई जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर एरिया डोमिनेशन पार्टी के अभियान में 10,43,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए। 2 अन्य अलग अलग अभियानों में असम राइफल्स के जवानों ने 81,00,000 रुपए मूल्य के विदेशी सिगरेट जब्त की और मिजोरम के चम्फाई जिले से 29,00,000 रुपए मूल्य की हेरोइन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को गुजरात तट, पूरे कोंकण तट, सोमालिया तट और आसपास के समुद्री क्षेत्र, ओमान और आसपास के यमन तट और आसपास के समुद्री क्षेत्र, मध्य और आसपास के उत्तर, दक्षिण अरब सागर और उत्तर पूर्व अरब सागर के कई हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। ईरान ने आज सुबह ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इस साल की अपनी सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल बमबारी की, जिसमें वेब 20 ने बैन गुरियन एयरपोर्ट, जैविक अनुसंधान केंद्र और कमान और नियंत्रण सुविधाओं को निशाना बनाया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने पुष्टि की कि ये हमले हाल ही में ईरानी क्षेत्र पर अमरीकी और इजरायली हवाई हमलों के जवाब में किए गए थे, जो चल रहे पश्चिम एशियाई संघर्ष में एक खतरनाक वृद्धि को दर्शाता है, जो अब अपने दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। हाइफा में ईरानी मिसाइलों से कम 23 लोग घायल हो गए, जिनमें 1 किशोर सहित 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कारमिल में 1 महिला के दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 18 ईरानी मिसाइलों ने रात भर में इजरायल की मिसाइल रक्षा प्रणाली में प्रवेश किया, जो इस साल सफल हमलों का उच्चतम प्रतिशत दर्शाता है। इजरायली रक्षा सूत्रों के अनुसार ईरानी मिसाइल बेराज में लगभग 30 बैलिस्टिक मिसाइलों शामिल थी, जिसमें केंद्रीय कब्जे वाले फिलिस्तीन और बैन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाने वाले शहीद 136 आत्मघाती ड्रोन के साथ साथ सटीक निर्देशित ठोस और तरल ईंधन मिसाइलें शामिल थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए कल एक आपात बैठक बुलाई है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमरीकी सैन्य हमलों के बाद एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं। इस बीच ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम ने IAEA को लिखे एक पत्र में कहा है कि उनका देश अमरीकी हमलों की जांच कराना चाहता है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से यह भी चाहता है कि वह अमरीकी हमलों की निंदा करे। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की थी कि ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अमरीकी हमलों से विकिरण के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानीकर्ता से सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की कि विकिरण स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि और जानकारी मिलने पर आगे आकलन किए जाएंगे। अमरीकी हमलों के बाद एजेंसी की यह पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया है। कनाडा ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। अमरीका क्षेत्र क्वालिफायर में बहामास पर शानदार जीत के बाद कनाडा ने अपना स्थान सुनिश्चित किया। यह टूर्नामेंट में उसकी लगातार 5वीं जीत थी। इसके साथ ही कनाडा 20 टीमों के टूर्नामेंट में पहले से क्वालिफाई कर चुकी 13 टीमों में शामिल हो गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।